Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Amit Goyal.
नमस्कार, मार्केट मंत्र कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञ पुनीत जैन। पुनीत, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद अमित।
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन।
रिवाइवल इन रूरल स्पेंडिंग पुशिंग डिमांड कंडीशंस रिपोर्ट्स आरबीआई बुलेटिन। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस टैंक्स नियरली 1% टुडे एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेडी अमिड अ स्ट्रांग डॉलर।
आर्थिक सुर्खियों में, रिजर्व बैंक के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च में बढ़ोतरी से मांग में बढ़त। घरेलू शेयर सूचकांकों में 1% तक की गिरावट और डॉलर में मजबूती से कच्चे तेल की कीमतों में स्थिरता। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही की शुरुआत में अर्थव्यवस्था में तेजी से संकेतों के साथ हुई है। आरबीआई के मासिक बुलेटिन के अनुसार कृषि परिदृश्य में सुधार और गांवों में खर्च बढ़ने से मांग की स्थिति बेहतर हुई है। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय एनएसएसओ के मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय सर्वेक्षण के आधार पर कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ रहा है और ग्रामीण शहरी विभाजन कम हो रहा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, मनरेगा जैसी योजनाओं में बढ़ी मजदूरी दर और रोजगार के लिए शहर जाने वाले लोगों से ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले धन में बढ़ोतरी से ग्रामीण परिवारों की खरीद क्षमता में बढ़त हुई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन, चिकित्सा और उपभोक्ता सेवाओं पर होने वाला व्यय अनाज पर होने वाले खर्च से अधिक हो गया है। इस आशाजनक रुझान से ग्रामीण भारत और शहरी क्षेत्रों के बीच अंतर कम हो रहा है। पुनीत, कितनी सार्थक और कितनी उत्साहजनक खबर ये मानते हैं, क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च में बढ़त होती है और जैसा कि इस रिपोर्ट में कहते हैं कि अनाज के ऊपर के अलावा भी बाकी के खर्चों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो क्या ये माने कि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है उसमें एक धीमी ही सही लेकिन एक मजबूत सुधार की शुरुआत हो रही है?
जी बिल्कुल अमित, आपने सही कहा और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक मैं कहूंगा मेजर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, क्योंकि हमें सिर्फ एक जीडीपी जब बात करते हैं कि जीडीपी हमारा 7% बढ़ रहा है, लेकिन वो जीडीपी की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कौन कौन से वर्ग देश के हैं, कौन सी पॉपुलेशन की जो सेगमेंट्स हैं, क्या उनको सभी सेगमेंट्स को इक्वल फायदा मिल रहा है उस जीडीपी ग्रोथ का, वो जानना जरूरी है। और खासतौर से भारत जैसे देश में जहां पर 65% पॉपुलेशन आज भी जो रूरल एरियाज में रहती है, वहां पर ये जरूरी है कि जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसका पूरा फायदा रूरल एरियाज में जहां पर काफी पॉपुलेशन रिजाइड करती है और जहां पर हमारी रियल एक्टिविटी मैं कहूंगा इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है वहां ये फायदा पहुंचे। और पीछे कुछ दिनों ये चिंता रही है कि जो अर्बन इकोनॉमी है खासतौर से कोविड के बाद, वहां तो हमने रिवाइवल देखा था, लेकिन जो रूरल डिमांड थी जिसको हम एफएमसीजी कंपनियों के माध्यम से नापते हैं या दूसरी कंजम्पशन पैटर्न से देख रहे थे, तो वहां पर थोड़ा स्लो डाउन था। और पिछले 2-3 वर्षों से यह चिंता रही थी कि क्या ऐसा तो नहीं कि रूरल एरिया जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पिछड़ रहे हों, लेकिन ये जो अब आंकड़े सामने आए हैं आरबीआई के ये बहुत उत्साहजनक है। मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी डायरेक्शन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भारत के लिए।
हाँ पुनीत, जैसा कि आपने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 65% जनता रहती है और वहां पे अगर जैसे रिपोर्ट में कहा गया परिवहन, चिकित्सा और उपभोक्ता सेवाओं पर होने वाला व्यय, मतलब इन चीजों में अगर खर्चों में बढ़ोतरी हो रही है तो स्वाभाविक ही है कि इन क्षेत्रों का विकास भी होगा, और चूंकि ये परिवहन और उपभोक्ता सेवा के अलावा जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो ढांचागत सुविधाओं में भी आती हैं, तो अगर इन चीजों में सुधार के साथ साथ इन चीजों या इन स्थितियों में भी सुधार होगा, नए नए इन माध्यम के वहां पे ढांचागत सुविधाएं भी बढ़ेंगी, जैसे अगर परिवहन की बात करते हैं तो सड़कों में सुधार हो रहा है, चिकित्सा की बात करें तो नए अस्पताल बन रहे होंगे या चिकित्सा सुविधाओं में भी सुधार हो रहा है, तो इनके सुधार होने से क्या हमारे पास ये मानने के पर्याप्त कारण हैं, और एक विशेषज्ञ के तौर पर आपका क्या आकलन है कि ये जो इन सब चीजों में सुधार आता है तो ये सुधार लंबे समय तक टिकते हैं, न कि अल्पकालिक रहते हैं।
बिल्कुल अमित, देखिए जो अगर हमको लॉन्ग टर्म हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी चाहिए इकोनॉमी और एक वेलफेयर इकोनॉमी चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि सिर्फ जीडीपी के आंकड़े बढ़ने से ही खुशहाली का हम आकलन कर पाए। ये जरूरी है कि जो जीडीपी या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो प्रॉस्पेरिटी है, उसका फायदा सभी वर्ग को पहुंचे। और खासतौर से ये जो हम कंपेरिजन करते हैं, जो बेसिक नीड्स हैं जैसे खाना और कपड़ा, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान पहले एक स्लोगन हुआ करता था और रोटी और कपड़ा उसमें मेन कंजम्पशन होती थी, अगर हम पुराना आंकड़ा उठा के देखें तो ज्यादातर रूरल एरियाज में जो आमदनी होती थी उसका बहुत बड़ा हिस्सा सिर्फ खाने में और बेसिक नीड्स में उसका कंजम्पशन होता था। उनके पास कोई वैल्यू एडिशन या एक अपने जीवन को सुधार करने के लिए वो एक्सपेंडिचर नहीं कर पाते थे, उतनी आमदनी नहीं रहती थी रूरल एरियाज में। जो अब आंकड़े आप बता रहे हैं और जो आरबीआई के आंकड़े हैं, ये बता रहे हैं कि वो आमदनी का स्तर बढ़ा है और जो बेसिक नीड्स हैं उससे आगे बढ़कर, क्योंकि एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये जो हम जब एक्सपेंडिचर बढ़ता है, कन्वेयंस, ट्रांसपोर्ट, ये तभी हो पाता है जब हमारे पास डिस्पोजेबल इनकम हमारे हाथ में होती है। और ये पैटर्न अगर आप देखें, कंजम्पशन पैटर्न रूरल एरियाज का, अर्बन एरियाज का जो फर्क था, अर्बन एरियाज में जो ज्यादातर कंजम्पशन थी वो वैल्यू एडेड सर्विसेज में थी और रूरल एरियाज में वो बेसिक सर्विसेज में थी। तो मुझे लगता है कि ये जो चेंज हो रहा है, और जैसा आपने कहा कि जो रूरल अर्बन डिवाइड है वो कम करने की जरूरत है, जिससे कि एक इक्विटेबल डेवलपमेंट पूरी इकोनॉमी में हो। और ये आंकड़े मुझे उसको उत्साहित करते हैं कि हम उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं।
ये जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो ये जो परचेजिंग पावर जो अगर बढ़ रही है, तो इसके कौन कौन से कारक आपके नजर में हो सकते हैं?
अमित देखिए, इसके कई कारण हैं और ये एक सच बताइए आपको, तो इसके लिए बहुत कोशिश की गई, ऐसा नहीं है कि ये कोई कोशिश हाल ही में की गई, कई वर्षों से इस प्रकार के प्रोग्राम्स आते थे जो कि गवर्नमेंट लॉन्च करती थी। मुझे लगता है कि लेकिन उनको इफेक्टिवली डिलीवर करना, जो हमने अब देखा है कि जो जनधन अकाउंट्स के थ्रू, आधार के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू या उज्ज्वला योजना के थ्रू जो योजनाएं बनी, उन योजनाओं में ये देखा गया कि जो इफेक्टिव ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट है वो बहुत अच्छा है। पहले भी योजनाएं बनती थी और अगर, लेकिन उसका काफी बड़ा हिस्सा लीकेज होता था, वो पहुंचता नहीं था बेनिफिशियरीज के पास। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है पूरी वेलफेयर जो प्लानिंग,
किसान सम्मान निधि भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल निभा रहा है,
किसान सम्मान में। और सबसे बड़ी बात, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो हो रहा है और सीधा महिलाओं को, किसानों को, यूथ को जो उसका फायदा मिल रहा है, मुझे लगता है उसका ये असर है कि हम ये जो इंडिकेटर्स हैं, वेलफेयर इंडिकेटर, वो बदल रहे हैं।
Puneet, when you talk about rural consumption going up, you've seen that in electricity, especially with the electricity infrastructure grid set up by the central government all across the country, it's gone up by 8%. But you also have indicators like the average monthly per capita expenditure, the MPCE, and you have the urban and the rural divide. Still, it's showing that for the month of March, April, the urban is double that of rural consumption. How do you see, when do you see the gap actually closing between the two, especially with India's GDP forecast at 7%, IMF has raised it by 20 basis points, and to what extent is GDP linked to consumption, with 60% of private consumption in India?
So Arjun, you very put it very aptly. See, while broadly we look at GDP growth as an indicator of a country's development or the ability of our achievements by the government policy or something, but I think it is the measure of effectiveness of government policy. If we find this divide between urban and rural areas, the consumption that gets narrowed. What is really heartening is that this gap, in fact, which widened post-COVID, because after COVID, we saw that the initial data that we got, we saw that the rural consumption, it rebounded, but rural areas were not able to come back to the pre-COVID levels of activity. And we have been looking for this data where we see that the rural India also starts picking up consumption and they start getting benefited from economic development, which is now pretty robust right now. So I think all policymakers, they try to achieve this. They try to reduce this gap. Like I said earlier, majority of India's population lives in villages, lives in rural areas. So unless we are able to uplift that segment also, even if for economic development, pure economic numbers, that segment of population has to be benefited. And I think that is what these numbers are suggesting. And definitely, I think that is the aim of all policies, to be able to bring these two segments together.
Well, we see a convergence through connectivity. You have city and rural areas being connected through roadways, waterways, airports, ports. But the smart cities were seen as a key for the urban-rural divide to come down. When do you think that will actually mature in terms of the smart cities, so that those areas which were concentrated rural areas could become urbanized?
So Arjun, if you look at the way infrastructure has developed to bring development to rural areas, I think smart cities were not that important. They became very important initially, but I think that right now, if you look at the priority of the government, it appears that they want to improve connectivity to rural areas. They want to increase the purchasing power in rural areas. I think therefore, right now, if you ask me, it appears that the smart city project seems to be somewhat on a slower track compared with the wider objective of developing infrastructure in rural areas.
Puneet, chunki charcha mein is tarah ki jab charchaein aayi ki ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क सुविधाएं और चिकित्सा सुविधाएं, बिजली की, जैसे अर्जुन ने अभी बात करी, अगर इन सुविधाओं का विस्तार हो रहा है और साथ ही साथ क्योंकि स्मार्ट सिटी की जब बात आई तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत सारी मूल सुविधाएं, जैसे कि एयरपोर्ट्स कहीं बनाए जा रहे हैं. अगर दिल्ली के आसपास के ही क्षेत्रों में देखें तो वहां पर नई सिटीज, फिल्म सिटीज हों, चाहे वहां पर इंडस्ट्रियल सिटीज हों, वो बसाई जा रही हैं. साथ ही साथ नए एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं. क्या इनके कारण भी वहां पे बड़ी मात्रा में जमीन का अधिग्रहण सरकार करती है और उससे भी फौरी तौर पे ही सही, लेकिन एक लंबे समय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के पास पैसे आते हैं तो खर्च करने की जो क्षमता है वो क्या इसकी वजह से बढ़ रही है? जबकि आरबीआई भी कहता है कि दो चीजें भी और इसके अलावा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मनरेगा में भी जो उनका डेली वेजेस थे, जो मजदूरी थी, उसको बढ़ाया गया है. साथ ही साथ जो शहरी क्षेत्रों में लोग रह रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी कमाई का एक हिस्सा लगातार भेज रहे हैं और उसमें भी काफी बढ़त हुई है. तो इन सब माध्यमों में क्या माने कि ग्रामीण क्षेत्रों की जो कमाई है या खर्च करने की शक्ति है वो अब हम मानने के पर्याप्त कारण है कि उसमें फौरी तौर पर कोई झटका या नहीं मिलेगा, लगातार बढ़ता रहेगा?
नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा. जो और देखिए उसका मुख्य कारण यह है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, अगर हम रेमिटेंस की बात करें, जो रूरल एरिया से में आ रहा है पैसा अर्बन एरिया से, कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेहतर हो गया है. पहले अगर एक मजदूर अपना पैसा भेजना चाहता था गांव तो उसका कोई जरिया नहीं था, वो किसी के थ्रू भेजता था तो और वो पैसा पहुंचता नहीं था उसके परिवार को. अब वो आप इमीडिएटली उसके परिवार को वो पैसा मुहैया होता है उसके फोन के ऊपर. तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रकार से, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कनेक्टिविटी की बात करी हमने, रोड्स की बात करी, चाहे लैंड एक्विजिशन में जो पैसा आता है, लेकिन और बहुत से कारक हैं जिस वजह से जो प्रोस्पेरिटी है वो बेटर हो रही है. देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि बहुत बड़ा चैलेंज है. अगर आज करीब करीब 100 करोड़ आज की भी भारतीय जो है वो गांव में रहते हैं, अर्बन रूरल एरियाज में रहते हैं, तो आप उनको कोई एकदम एक झटके में उनका पूरा स्तर ऊपर नहीं कर सकते. एक स्लो प्रोसेस है, पर खुशी की बात यह है कि हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आने वाले समय में डेफिनेटली,
क्योंकि शहरी क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्र की तरफ मेट्रो की कनेक्टिविटी की बात करें, सड़कों की कनेक्टिविटी, अच्छा रोजगार अगर उत्पन्न कराने हैं तो ऐसे माना जाता था कि बहुत बड़े पैमाने पर आपको औद्योगिकीकरण करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं से बहुत बड़ी मात्रा में आपको रोजगार सृजन होता है. तो ऐसे दौर में जब ये समन्वित विकास कर रहे हैं तो इस बात के मायने कितने महत्वपूर्ण होते हैं?
नहीं, बिल्कुल. देखिए अब इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करी तो रेलवे में कितना बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार ने पिछले 4 वर्षों में किया है और उससे भी एक पूरा देश का विकास आगे बढ़ रहा है.
चलिए नजर डाल लेते हैं शेयर बाजार पर. घरेलू शेयर बाजारों में आज मजबूती के बाद वैश्विक इक्वालिस के असर से गिरावट दर्ज हुई. बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की गिरावट से 755 अंक लुढ़ककर 80,588 के स्तर पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 1.1% के नुकसान से 275 अंक गिरकर 24,525 के स्तर पर बंद हुआ। बीएसई मिड कैप सूचकांक में 2.3% और स्मॉल कैप सूचकांक में 2.2% की गिरावट दर्ज हुई।
इंडियन बेंचमार्क इंडस्ट्रीज विच इनिशियली सर्ज टू फ्रेश रिकॉर्ड हाईज गेव अप दोज गेन्स सून एंड लॉस्ट नियरली 1% एट क्लोज इन द फेस ऑफ अ ग्लोबल सेल ऑफ स्नैपिंग द विनिंग स्ट्रीक ऑफ द लास्ट 4 कंसेक्यूटिव सेशंस। सेंसेक्स क्लोज द डे विद अ लॉस ऑफ 755 पॉइंट्स ऑफ 0.93% एट 80,588 and Nifty ended at 24,525, down 275 points of 1.11%. At the BSE, 194 companies hit their 52-week high, 27 hit their 52-week low. In the broader market, at the BSE, the mid-cap index was down by 2.31%, while the small-cap index fell by 2.22%. 26 out of 30 companies registered losses in the Sensex index. The three major laggards were Tata Steel, which fell by 5.17%, JSW Steel, which fell by 4.36%, and NTPC, which fell by 3.51%. Conversely, the top three gainers today were Infosys, 1.92%, ITC, which went up by 0.89%, and Asian Paints, which went up by 0.53%. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, all sectors logged losses. The major laggards are metal, which fell by 4.11%, commodities fell by 3.07%, and oil and gas, which fell by 2.87%. The overall market breadth at the BSE was negative. Out of 4,010 companies, the shares of 906 companies advanced, 3,014 declined, and 90 remained unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज पूर्व स्तर 83.66 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। डॉलर इंडेक्स मामूली बढ़त से 104.3 के स्तर पर कारोबार करता नजर आया। पुनीत, अगर शेयर बाजार की दिशा के बारे में बात करें, काफी अच्छा, अगर हम सारे सेंसेक्स की बात करें चाहे हम निफ्टी की बात करें, ये 24,500 के स्तर के ऊपर अगर निफ्टी रहता है और वो अपने आप को बरकरार रख रहा है, ऐसा नहीं है कि ठीक है क्षणिक गिरावट आ रही है या सुधार मुनाफा वसूली हो रही है, उसके बावजूद भी तकरीबन तकरीबन वहीं पे बना हुआ है, तो क्या यह मानने के पर्याप्त कारण है कि बाजार में अभी भी भरोसा बना हुआ है, या ये माना जाए कि बजट, क्योंकि अब कुछ ही दिनों में हम बजट देखेंगे, तो बजट के पहले बाजार अपनी सतर्क प्रक्रिया दे रहा है और शायद एक लंबी तेजी के लिए तैयार हो रहा है?
देखिए, हमें जब हम आज का बाजार को देखते हैं तो हमें पूरा ये ध्यान रखना होगा कि पूरे विश्व में पिछले दिनों काफी बड़ी तेजी रही है, और पिछले अगर एक महीने को हम देखें जब से इलेक्शन रिजल्ट्स आए और उसके बाद करीब करीब नए रिकॉर्ड्स बाजार लगातार बनाता रहा स्टॉक मार्केट्स, और एक बिल्कुल एक मैं कहूंगा बहुत पॉजिटिव एक आउटलुक मार्केट की तरफ और इकोनॉमी की तरफ डेवलप हुआ है, और उसके बाद ये थोड़ा एक मुनाफा वसूली होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है, थोड़ा बाजार में करेक्शन है जो मुझे लगता है हेल्दी भी है बाजार के लिए, क्योंकि जो नए इन्वेस्टर्स हैं, नए निवेशक हैं, उनको फेयर प्राइसेस पे भी इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिले जरूरी है। तो मुझे लगता है कि आज के बाजार में जो करेक्शन है वो एक ओवरऑल एक हेल्दी करेक्शन का पार्ट है और जरूरी भी है, लेकिन जो ओवरऑल लॉन्ग टर्म इंडिया इकोनॉमिक स्टोरी है, इंडिया ग्रोथ स्टोरी है, वो बरकरार है, उसमें मुझे नहीं लगता कोई शक है किसी को, भारतीय निवेशकों को या विदेशी निवेशकों को, और वो आउटलुक बहुत पॉजिटिव है। तो डेफिनेटली आज के बाजार, और देखिए आज बाजार में करेक्शन हुई है जबकि विश्व के बाजारों में काफी भारी करेक्शन हुई है पिछले 2-3 दिनों में, पर्टिकुलरली अमेरिका में, तो वहां पर एक नेचुरल सी बात थी कि
वी डोंट हैव द प्रोविजनल डेटा फॉर द सेल ऑफ इन द इक्विटी मार्केट राइट नाउ, स्पेशली फ्रॉम FIIs, एंड देयर इज सम इंडिकेशन दैट इफ इट्स हैपनिंग इन द US एंड इट्स हैपनिंग इन इंडिया ऑल्सो बाय द हेज फंड, सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी राइट नाउ, हाउ आर द मार्केट्स बीइंग लुक्ड एट, व्हाई इज देयर अ सेल ऑफ ग्लोबली?
So, if you look at the trend in US markets over the past couple of months, the technology sector stocks had really risen very sharply. So, if you look at Nvidia, the AI-driven stocks, and you look at the other technology-heavy names, the so-called Magnificent Seven stocks in USA, they were really going through the roof. And I think the valuations became unrealistic and they became unsustainable. So, clearly, smart money was booking some profits in USA in the last couple of weeks. Contrary to that, in fact, in India, we saw a lot of FII buying in the last 10-12 days. My belief is that would have, we would have seen some kind of pullback from those sectors. However, I must say that the domestic mutual fund industry is doing very well. We have seen very robust inflows into mutual funds in the last few months. Plus, right now, if my information is correct, so mutual fund industry is sitting on almost 1 lakh crore of liquidity in their hands. So any sharp fall in the markets will definitely will have a cushion, because mutual funds with a huge liquidity of 1 lakh crores will definitely be buyers in this market at low levels. So my belief is that this correction is healthy. Big investors are only waiting for prices to come down a little bit so they can buy more at low levels. Therefore, which is a normal market, really. So global markets do have a large influence on us, but I think the domestic liquidity and domestic confidence is more important.
Puneet, अभी पहली तिमाही में कंपनी जगत के भी कुछ नतीजे आ चुके हैं, कुछ नतीजे और आ रहे हैं, जिसमें कुछ कंपनियों ने काफी बेहतर प्रदर्शन भी किया है. क्या ये सारे इंडिकेटर्स और बजट के प्रति जो उम्मीदें हैं बाजार को भी उद्योग जगत को भी, रिजर्व बैंक ने तकरीबन ये एक तरीके से स्पष्ट कर दिया है कि ब्याज दरों में किसी तरह के बदलाव की उम्मीद फिलहाल ना करें, ऐसी सारी संभावनाओं के बीच बाजार किस दशा में बढ़ता हुआ देखते हैं और सरकार बजट में वो कौन सी चीजें हैं जो एक आर्थिक विशेषज्ञ या बाजार विशेषज्ञ के तौर पे आप मान रहे हैं कि बाजार कहीं ना कहीं मान के चल रहा है कि सरकार बजट में इन चीजों को तो निश्चित तौर पे ध्यान देगी ही देगी.
देखिए सबसे पहली बात है कि बाजार को, क्योंकि बहुत तेजी से बाजार बढ़कर आए हैं स्टॉक मार्केट्स, तो उनको कंसोलिडेट करने की जरूरत है. तो कोई भी अगर आज निवेशक हैं वो चाहेंगे कि फेयर वैल्यू पे वो इन्वेस्ट करें, यूफोरिया में या बबल टेरिटरी में वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते. तो क्लियरली बाजार को कंसोलिडेशन करने की, या आप कह सकते हैं कुछ, इट नीड्स टू टेक अ ब्रेथ एट दिस लेवल्स. दूसरी बात यह है कि बाजार कि जो कोई खास बाजार ऐसी उम्मीद नहीं करता कि कोई टैक्स में कंसेशन मिले सरकार से, या कोई ऐसी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा कोई स्टेप्स हो. मुझे लगता है कि अगर जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की जो पॉलिसी गवर्नमेंट फॉलो करती रही है, प्लस जो एनेबलिंग फैक्टर्स हैं फॉर डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज, बिकॉज रूरल कंजम्पशन एक बहुत बड़ा एक ड्रैग रहा है मार्केट के ऊपर, क्योंकि एफएमसीजी कंपनीज में हम देख रहे थे कंजम्पशन कम आ रही थी. तो क्लियरली जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं और डेवलपमेंट पॉलिसीज हैं उसके ऊपर बाजार की ज्यादा नजर रहेगी, इसके बजाय कि जो स्पेसिफिक टैक्स प्रपोजल्स हैं, यदि कोई बड़ा इसमें बदलाव नहीं होता तो मुझे लगता है बाजार उससे काफी खुश रहेंगे.
बट दिस इज ऑल्सो द अर्निंग्स सीजन, द फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट्स टुडे, रिलायंस इंडस्ट्रीज, विप्रो, पेटीएम, दीज आर अमंग 51 कंपनीज अनाउंसिंग देयर रिजल्ट्स. दैट शुड हैव बीन द ट्रिगर फॉर मार्केट्स गोइंग अप इवन मोर, टेक्निकली स्पीकिंग.
अर्जुन, व्हाट एक्चुअली हैपेंड वाज, for if you see today's market, the metal companies came down significantly. So Tata Steel, yeah. JSW Steel, because JSW Steel came out with results and they were not very good. In fact, the profits fell sharply. In fact, large number of companies which are in the commodity space, they have already declared some kind of a drawdown in their profit bottom line. So clearly the results season is not keeping up with the market expectations.
Is that because there's too much focus on margin per unit sold, or should it be volume based?
So it's also margins as well as on absolute numbers. So if you look at metal companies' profits, the profits have come down significantly and across the board. Even in the case of some building material companies like cement and all, we have seen the numbers haven't grown that much. But if you look at the last 1 year, stock prices of these companies have gone up by 2 to 3 times. So while the bottom line has not gone up that much, the stock prices have gone up a lot. So to that extent, I think the markets are ahead of fundamentals, and therefore the.
So what's the story with investors? Clearly, they are into the stock market quite heavily.
So Arjun, my belief is that there was some kind of euphoria, so people got carried away with this belief that markets are going to give constant returns. But I think that will seep in now.
पुनीत, जहां पर अर्जुन छोड़ा था वहीं पे भी मैं भी बात करना चाहूंगा. अगर मेटल क्षेत्र में गिरावट है, क्या इसके ये मानने के पर्याप्त कारण है? क्योंकि कॉपर की अगर बात करते हैं खासतौर पे, तो बहुत तेजी से इसमें बढ़त हुई थी, तो इसमें कंजम्पशन की कमी आ रही है या क्या कुछ हो रहा है, अगर संक्षेप में कुछ?
देखिए, थोड़ा जो चाइना में स्लोडाउन है, क्योंकि सबसे बड़ा कंज्यूमर जो था मेटल्स का वो चाइना है, वहां पर स्लोडाउन काफी ज्यादा है. तो मुझे लगता है कि मेटल जो स्पेस है वो सारी चाइना से अफेक्ट हो रही है अभी, और उसकी प्राइसेस इसलिए सॉफ्ट.
चलिए, रॉ मेटेरियल के हिसाब से कुछ कंपनियों के लिए तो अच्छी खबर होगी अगर मेटल के प्राइसेस गिरते हैं. नजर डाल लेते हैं एशिया शेयर बाजार पर. एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर गिरावट का दौर रहा। हांगकांग का हैंगसेंग 2%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 1%, सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.7% और जापान का निकेई 0.2% की गिरावट से बंद हुए। हालांकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.2% की मामूली बढ़त से बंद हुआ। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरूआती रुझानों में गिरावट का दौर नजर आया। लंदन, फ्रांस और जर्मनी के शेयर सूचकांक सत्र के दौरान 0.7% तक की गिरावट के दायरे में कारोबार करते नजर आए।
US stocks stumbled yesterday, reversing early gains as investors continue to rotate away from high-priced mega-cap growth stocks. Dow Jones Industrial Average slipped 1.29%, S&P 500 declined 0.78%, and Nasdaq decreased by 0.70%. Very briefly, to what extent is artificial intelligence driving the stock market in the US?
So, Arjun, artificial intelligence was really driving all technology stocks.
No? And machine learning.
And machine learning and these stocks in the first, in the last few months. But lately, in the last 4-5 sessions, we have seen there's a big pullback. And in fact, Nasdaq, which was running the markets, has come down a lot. And I think now some kind of a reality check is happening and they're looking at the real prospects of earnings growth from AI, which will take some time. So my belief is that the markets, which were in really, you know, in a bubble zone as far as valuation are concerned, they are correcting in USA and therefore the pullback.
So Dow Jones has crossed 40,000, Sensex has crossed 80,000. I mean, what's the upper limit?
So clearly there was this euphoria, I said, in the markets. And of course, now the markets are taking some kind of a reality check on this.
Well, let's have a look at the crude oil market. Oil prices were little changed today as strong dollar and concern over top oil importer China's economy were countered by a tighter supply outlook. Brent crude decreased by 0.31% to $84.85 per barrel. U.S. West Texas Intermediate is down by 0.46% to $82.44 per barrel when reports last came in. Oil prices right now are picking up. We know that OPEC is cartelized, but you know, US was a strong counterbalance from this SPR. They managed to reduce the price globally, but that was under Biden. With the presidential election going on right now, the debates, do you see oil prices actually picking up as a result of that?
That could happen because the markets are concerned that with a new administration in USA, probably it may, if it is Republican particularly, with the declared policies, I think it will create geopolitical tensions and there is a heightened risk for that. And therefore, the particularly oil prices are reacting in this manner.
And, you know, the India-Russia relations is being seen globally as a factor as to how India has managed to afford the oil bill through imports from Russia. Is that an example for others to follow?
It's an example for others to follow, but very difficult to do because India has the capability to balance these two factors.
In this geopolitics.
In this geopolitics. So it's very difficult. India has done very well.
नगर लगे थे सराफा बाजार पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 1% से अधिक की गिरावट से 73,340 रुपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर रहा। चांदी भी 2% से अधिक के नुकसान से 89,847 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई। वैश्विक बाजारों में सोना 1.7% की गिरावट से $2,414.40 प्रति औंस के स्तर पर रहा। चांदी भी 2.7% के नुकसान से $29.39 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुई। भारतीय बाजारों के साथ साथ अगर वैश्विक बाजारों के बारे में बात करें और खासतौर पर चांदी में $30, $31 से लेकिन अगर $29 पे आती है ये क्या संकेत है, जबकि भारतीय बाजारों में बात करें तो तकरीबन 90,000 से ऊपर अगर हाजिर चांदी की बात करते तो उसके ऊपर बनी हुई है और लगातार बनी हुई है।
अमित देखिए बहुत भारी गिरावट आई है सोने और चांदी में पिछले दो दिनों में और वही पूरे जो विश्व में जो एक रिस्क एवर्स एक सिचुएशन चल रही है और अभी एक सब मार्केट्स में आप देखें पुल बैक है। स्टॉक मार्केट्स में, बॉन्ड मार्केट्स में, कमोडिटी मार्केट्स में सब जगह हम देख रहे हैं पुल बैक है। जो पैसा जो है वो एसेट से बाहर आ रहा है सेफ हेवन की तरफ, तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि फिलहाल इसमें काफी
गिरावट है। लेकिन सोना चांदी हमेशा से सेफ हेवन माना जाता था, उसके बावजूद भी
ये इन्वेस्टमेंट जो
है यहां पर ये बात हो रही थी कि 1 लाख के स्तर को कौन पहले छुएगा।
देखिए अगर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट होता तो डेफिनेटली पॉसिबल था, लेकिन अभी फिलहाल मुझे लगता है कि मार्केट जो है वो कैश मार्केट से निकाल रहे हैं इन्वेस्टर्स और दे वांट टू सिट आउट एंड सी कि क्या होता है।
क्रिप्टो करेंसी गोइंग अप सो मच,
क्रिप्टो वेंट अप अ लॉट बट इनफैक्ट यस्टरडे व्हेन अदर मार्केट्स फेल क्रिप्टो आल्सो फेल विद इट। सो क्लियरली दिस इज अ टाइम व्हेन इन्वेस्टर्स वांट टू टेक मनी ऑफ द टेबल फ्रॉम ऑल एसेट्स।
क्या क्या जैसे अर्जुन ने कहा कि अमरीकी चुनाव का भी असर इन सब चीजों पर पड़ रहा है,
बिल्कुल उसी का ही असर है क्योंकि एक नया एक आंकलन कर रही है मार्केट कि कौन नया कैंडिडेट होगा, कौन क्या पॉलिसीज होंगी, उसी को रिएक्ट कर रही है।
तो भारतीय बाजारों में सोने और चांदी में आपको भी लगता है नरमाई के संकेत हैं और ये क्योंकि
इंटरनल कंजम्पशन
लेकिन साथ साथ क्योंकि खरीदारों के लिए भी बहुत बड़ा था भारतीय बाजार में, ये तो हालांकि ये बात सही है कि फिलहाल शादी ब्याह का सीजन नहीं है, लेकिन उसके आने से पहले और त्योहारी सीजन से पहले
देखिए अमित, मेरा अपना अनुमान है कि ये काफी वोलेटाइल मार्केट्स होंगी, ऊपर नीचे हम बहुत तेजियां मंदी देखेंगे, और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स है उनको चिंता करने का विषय नहीं है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड मुझे लगता है अभी ऊपर ही रहेगा।
चलिए पुनीत, कार्यक्रम में आने और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा सरल शब्दों में करने के लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद।
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर।
क्लोजिंग हेडलाइंस इन इंग्लिश। रिवाइवल इन रूरल स्पेंडिंग पुशिंग डिमांड कंडीशंस रिपोर्ट्स आरबीआई बुलेटिन। डोमेस्टिक बेंचमार्क इंडिसेस टैंक नियर 1% टुडे एंड क्रूड ऑयल प्राइसेस स्टेडी अमिड स्ट्रांग डॉलर। एंड दैट्स इट इन दिस एडिशन ऑफ मार्केट मंत्रा फॉर नाउ। गुड बाय। Office Mantra.